ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। श्री कृष्ण बलराम मंदिर इस्कान वृंदावन में प्रातः श्रीमद्भागवत के सत्संग में आपका हार्दिक स्वागत है। हम श्रीमद्भागवत महापुराण के सातवें स्कंद के अंतर्गत छठे अध्याय में भागवत पुरुष महाजन प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं जो वो अपने सहपाठी दैत्यों को दे रहे हैं उनका श्रवण और वर्णन हो रहा है। और आज हमारे पास तीसरा श्लोक है जिसका हम रसास्वादन करेंगे। इससे पहले हिरण्यकशिपु को प्रहलाद महाराज ने नवदा भक्ति का सर्वश्रेष्ठ अपनी शिक्षा का उत्तर दिया जिसके ऊपर क्रोधित होके प्रहलाद को दंडित करना चाहा, प्रहलाद मर नहीं पाया। तो शंडा और अमरक ने कहा कि आप चिंता मत करो राजन, हमारे गुरुदेव आ जाएंगे तो ये बच्चे आए इसको सिखा देंगे तो वापस अपने गुरुकुल में लाए। और शंड और अमरक मानो भोजन करने गए कि कहीं अवकाश पे गए तो प्रहलाद महाराज ने सपाठियों को इकट्ठा किया और जो स्वयं ने अपने गुरुदेव नारद से भागवत धर्म की शिक्षा प्राप्त की थी माता कयाधु के गर्भ में, उसी शिक्षा का उपदेश देने लगा। तो कोई कहे कि प्रहलाद महाराज कौन सा उपदेश दे रहे थे अपने सहपाठियों को? भागवत धर्म का। ये भागवत धर्म कहां से सीख के आए थे? नारद ऋषि से। और नारद ऋषि इस भागवत धर्म को कहां से ग्रहण किया है? अपने गुरुदेव नारायण से और अपने पिता ब्रह्मा से चार भागवत को ग्रहण किया है। तो दोनों प्रकार से भागवत धर्म के आचार्य हैं नारद जी। तो प्रहलाद महाराज ने पहला जो श्लोक कहा वो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है और प्रभुपाद जी उस श्लोक को प्राय बहुत से प्रवचनों में कहे हैं। उस श्लोक का क्या नाम है, क्या शब्द है पहला? कौमारे माचरे धर्म प्राज्ञ, प्राज्ञ का मतलब जो बुद्धिमान है। धर्म भागवतम इह, इस जगत में भागवत धर्म का बुद्धिमान को कुमार अवस्था से ही अध्ययन करना चाहिए। कुमार अवस्था कहते हैं 5 वर्ष की, तब से करना चाहिए। भले मानव जन्म थोड़े समय के लिए है, परंतु बहुत बड़ा लाभदायक है। और इसके बाद कल श्लोक महाराज श्री कह रहे थे, परम पूज्य प्रबोधानंद स्वामी महाराज, उस श्लोक में क्या विशेष बात थी? विष्णु पद सर्पणम, भगवान के चरणों की ओर आकर्षित होकर जाना चाहिए और उनके चरणों में लगना चाहिए, और कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, इसका भाव ये था। तो अब ये प्रश्न उठता है कि वहां जाना है तो फिर खाएंगे कहां से, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहां से, मेहनत नहीं करेंगे तो घर परिवार कैसे चलेगा। तो ये श्लोक प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को कह रहे हैं। सुखम इंद्रियैकं दैत्याः देह योगेन देहिना सर्वत्र लभ्यते दैवात् यथा दुःखम् अयतन्तः सुखम सुख ऐन्द्रियकम् भौतिक इंद्रियों के प्रसंग में दैत्याः दैत्य कुल में उत्पन्न मेरे मित्रों देह योगेन विशेष प्रकार का शरीर होने के कारण देहिनाम समस्त देहधारी जीवों का सर्वत्र सभी जगह किसी योनि में भी लभ्यते उपलब्ध है दैवात् भाग्य से यथा जिस प्रकार दुःखम दुख अयतंतम बिना प्रयास के। श्रील प्रभुपाद का अनुवाद। प्रहलाद महाराज ने आगे कहा, हे दैत्य कुल में उत्पन्न मेरे मित्रों, शरीर के संपर्क से इंद्रिय विषयों से जो सुख अनुभव किया जाता है वो तो किसी भी योनि में अपने विगत सकाम कर्मों के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा सुख बिना प्रयास के उसी तरह स्वतः प्राप्त होता है जिस प्रकार से हमें दुख प्राप्त होता है। अब थोड़ा सा श्लोक को देख के फिर तात्पर्य को पढ़ते हैं, ये तात्पर्य पूरा करते हैं। इस भौतिक जगत में सभी प्रकार के जीवन में कोई न कोई तथा कथित सुख तथा दुख लगा रहता है। कोई भी नहीं जानता, कोई भी नहीं चाहता कि दुख आए, किंतु वो आता है। इसी प्रकार भौतिक सुख के लाभों को पाने के लिए प्रयास न करने पर भी हमें सुख स्वतः प्राप्त होता है। ये दुख सुख किसी भी जीवन में बिना प्रयास के मिलते हैं। अतएव दुख के विरुद्ध लड़ने या सुख के लिए कठिन श्रम करने में समय यथाशक्ति का अपव्यय ही व्यर्थ है। मनुष्य जीवन में हमारा एकमात्र कर्तव्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने संबंध को जागृत करना है। इस प्रकार भगवत धाम वापस जाने के लिए योग्य होना चाहिए। हमारे द्वारा भौतिक शरीर स्वीकार करते ही सुख तथा दुख आते रहते हैं, चाहे वो शरीर किसी भी रूप में हो। हम किसी भी दशा में ऐसे सुख दुख से बच नहीं सकते। अतएव मनुष्य जीवन का सबसे अच्छा उपयोग परम भगवान विष्णु के साथ अपने संबंध को पुनः जागृत करना है। हरे कृष्णा ओम अज्ञान तिमिरान से ज्ञान अंजन शुभ चौपासन सुखम ऐन्द्रियकम दैता। पहला शब्द संबोधन है दैता, दैत पुत्रों। इसके पीछे भाव ये है कि आप तो हो तमोगुण के रजोगुण के दैत पुत्रों, परंतु जो देवता सतोगुण में है उनके लिए भी भागवत धर्म दुर्लभ है। तो भागवत धर्म कैसे मिलता है अगर पूछें तो कहते हैं केवल महापुरुष की कृपा से, केवल भक्तों की कृपा से भागवत धर्म मिलता है। ये दैत्य शब्द की परिभाषा हमारे पूर्वज आचार्यों ने दी है। दैत्य कहने का अर्थ है कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, क्योंकि ये तो केवल भागवत महापुरुषों की कृपा से प्राप्त होता है भागवत धर्म। भगवान की कृपा हो विशेष या भगवान के महत सेवा, महत चरण सेवा करने से प्राप्त होता है। सुखम ऐन्द्रियकम का क्या अर्थ है? इंद्रियों का सुख, आंख के दर्शन का सुख, कान के श्रवण का सुख, नासिका के सौरभ का सुख, जीभा के स्वाद का सुख, ये सारे सुख ये इंद्रियों के सुख कहलाते हैं। ये बोला कैसे आते हैं? देह योगे न देही नाम। देह योगे न का मतलब आपने देह योगे न देही नाम सर्वत्र लभ्यते दैवात। पहले देवात शब्द को समझना चाहिए। देवात का मतलब हमारे भाग्य के अनुसार। अच्छा, हमारा भाग्य कैसे बनता है? हमारे कर्मों से। जो हमने कर्म किए कई जन्मों में उनके फल स्वरूप अधिकारी देवताओं ने किसी विशेष जीव को किसी शरीर में स्थान दिया उस सुख और दुख को भोगने का। अब यहां एक बात समझें, आप हैं समझो जीवात्मा, ये पूरा मैं जीवात्मा हूं। अगर मैं यहां से दिल्ली जाने के लिए साइकिल पे जाऊंगा तो पसीना कितना निकलेगा? निकलेगा ना। अच्छा, अब टमटम में जाऊं तो कूदता कूदता जाऊंगा। अगर अब मैं मारुति सुजुकी में जाऊं तो कुकड़ू बन के जाऊंगा। और अब मैं वो श्री हमारे श्रीनिवास की ओडी में जाऊं तो हेलीकॉप्टर में जाऊं। तो जो भी मैंने गाड़ी ली उसका सुख और दुख मेरे गले पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मैं तो वही हूं, परंतु जिस गाड़ी को मैंने मेरे सामर्थ्य के अनुसार, अगर पैसे है तो बड़ी कार में जाऊंगा, नहीं है तो वो लोकल ट्रेन में गया तो जो एक लोकल ट्रेन छत्तीसगढ़ से जाती है तो टांगा हुआ जाऊंगा। तो इसका अर्थ ये है कि आप में जो कर्मों की कमाई आपने दी है जी, उसकी मूल्य चुकाया है, वैसा आपको शरीर मिलेगा। वो गाड़ी के समान है। वो काम कैसे करेगा? जैसे उसका स्वभाव होगा। कुत्ते के शरीर में गए तो फिर भाव भाव ही करना पड़ेगा, हरे कृष्णा नहीं कर सकते, क्योंकि वो शरीर काम ही ऐसे करता है, उसके अंदर मशीन ही ऐसी लगी हुई है, वो बनाई ऐसे है। तो जो शरीर हमारे को हमारे भाग्य से मिला उसके अंदर जो भी यंत्र डाला हुआ है अंतःकरण का, वो वैसे ही काम करेगा। आप फिर जैसे आप फिर ऐसे नहीं कर, अब हवा में उड़ जाएं जहाज में और फिर कहें कि नहीं नहीं मैं घर चीज भूल के आऊं, वापस नहीं जा सकते, उधर ही बैठना पड़ेगा, वो दो घंटे आप कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे जब हमारे को शरीर मिलते हैं तो जितने जीव उस शरीर में जितना समय रहना है वहां रहना पड़ेगा, और वैसे ही करना पड़ेगा जैसे उस शरीर का स्वभाव है। तो ये प्रहलाद महाराज के पहले दो लाइनों का अर्थ है, सुखम ऐन्द्रियकम दैताः देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते देवात। सर्वत्र लभ्यते के सर्वत्र के दो भाषाएं, दो अर्थ है, सब जगह, सब योनियों में और सब समय। और सब जगह का मतलब है देवलोक में अगर देवता का शरीर मिला तो देवता का सुख मिलेगा, और किसी और लोक में जन्म मिला तो वैसा सुख मिलेगा। तो जहां जन्म हुआ सर्वत्र का अर्थ है कहीं भी। जैसे मानो अमेरिका में जन्म हुआ तो गोरा शरीर मिलेगा, अफ्रीका में जन्म हुआ तो काला शरीर मिलेगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। आप जहां जाओगे वैसा ही आपको बनना पड़ेगा। अब कहते हैं यथा दुखम अयतनतः, आप कोई यतन नहीं करता है। यतन करने का अर्थ है जैसे हम क्या है यतन करते हैं भक्ति का कि सवेरे उठना है, जप करना है, कथा सुननी है, ये यतन है। दो शब्द है प्रियतन यतमानश्च, प्रियतन करना और यतन करना, दो शब्द है भगवद गीता के छठे अध्याय में। जो योगी असफल होता है वो एक तो प्रयत्न करता है कि अब मेरे को अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, उसके लिए प्रयत्न है, और यत्न करना है कि मैं नीचे नहीं गिरूं। ये भी सावधान रहना है, दो शब्द साथ में लगे हुए हैं, प्रयत्मान यतमानस्तो योग सिद्धिम, हाँ योग संसिद्धिम क्लवश अनेक जन्म संसिद्धिम तथा यान्ति परम गतिम, ऐसे कुछ है। तो प्रयत्न और यतन दोनों शब्द है। तो यहां यतन कोई नहीं करता है इसका अर्थ है कि मंदिर में कोई नहीं आके प्रार्थना करता है हे कृष्ण बलराम मेरे चाचे की टांग टूट जाए, नाने को कैंसर हो, दादा को कोरोना हो, कोई नहीं कहता है, परंतु सबको हो रहा है। इसका मतलब कोई प्रयत्न नहीं करता है तो दुख भी आता है, इसका मतलब सुख भी अपने आप आता है। ऐसा माइक महाराज कर रहा था प्रवचन। महाराज ने कहा आपके जीवन में अगर सुख भोग होगा तो आप सोए रहो तो भी आपको घर बैठे मिल जाएगा, जैसे दुख बिना बुलाए दरवाजे पे आता है। आप के मुंह में कोई जबरदस्ती खिलाएगा, अगर आप खाना नहीं भी चाहो कुछ नहीं करो, आपको पेट भरना होगा, भगवान को देना होगा, तो पहले अपने आप खाना आपके सामने प्रसाद आ जाएगा, और आप हाथ से नहीं उठाओ तो जबरदस्ती कोई मुंह में भी डाल देगा। इसको बोला मुझे संदेह है इस बात के ऊपर, एक पेड़ के ऊपर चढ़ के छुप के बैठ गया, बोला देखूं भगवान यहां कैसे खिलाता है मुझे, मैं तो जाऊंगा नहीं, पकाऊंगा नहीं, मांगूंगा नहीं, और कोई सामने लाके रखेगा तो खाऊंगा ही नहीं, कैसे भगवान खिलाता है, बैठा है ऊपर। एक दिन गुजरा है, दोपहर ही गुजरी है, कोई यात्री वहां से जा रहे थे, देखा घना पेड़ है, छाया अच्छी है, चलो यहां बैठ के भोजन करके भोजन खोल के खाते हैं। बड़ा टिफिन खोला, अच्छा सा भोजन, पूरी सब्जी ये सब माल, पकोड़े वकोड़े निकाले, तब तक घोड़ों की टापों में डाकुओं के आने का आवाज आया, वो वहीं प्रसाद को छोड़े भागे। अब प्रसाद उधर ही पड़ा है, भाग गए, डाकू आए पेड़ के नीचे, प्रसाद देखा, बोला खाना नहीं चाहिए, किसी ने विष डाल के कहीं हमको जबरदस्ती मारने के लिए रखा हो तो ढूंढो किसका प्रसाद। अब चारों ओर ढूंढते हुए इसको पेड़ पे, बोला नीचे उतरो, बोला नहीं उतरूंगा, तो दो डाकू ऊपर से चढ़ गए, उसको जबरदस्ती नीचे लाए, बोला प्रसाद खाओ, बोला नहीं खाऊं। अब चार डाकुओं ने पड़े दो पांव पकड़े को, हाथ में दो पकड़े और मुंह में जबरदस्ती घुसा, और घुसे के बोला अब इसको निकलो, अब क्या करें बताओ। और वहां प्रसाद खाने के बाद देखा कि मरा नहीं, डाकू भी प्रसाद खाया। फिर इसने कहा महाराज आप सच्चे हो, आप प्रयास नहीं करो तो भी जबरदस्ती कोई खिला था। कितना बड़ा परिश्रम करना पड़ा होगा डाकू को उसको प्रसाद खिलाने का, छुप के पेड़ पे बैठा होगा। तो सुख जो है अगर आपके भाग का है ना तो अपने आप आके मिलेगा, आपके कर्मों का कमाया हुआ है आपके पास आ जाएगा समय आने के ऊपर, ऐसे दुख भी आपके पास आएगा। ये प्रहलाद महाराज के ये श्लोक कहने के बाद निर्णय बताएंगे अगले श्लोक में। निर्णय क्या बताएंगे, इसलिए संसारी सुख के लिए अधिक प्रयास करके समय का व्यर्थ ज्ञान मत करो। ये जो गधा मजूरी सुबह से शाम करते हैं ना उनके लिए सावधानी करने के लिए है कि कुछ मत करो, इतना करो जिससे काम चल जाए। मुख्य क्या करना है, अब श्री प्रभुपाद जी के तात्पर्य को थोड़ा ध्यान से देखिए। इस भौतिक जगत में सभी प्रकार के जीवन में कोई न कोई तथाकथित सुख या दुख लगा रहा है। प्रभुपाद ने तथाकथित क्यों लिखा? तथाकथित क्यों लिखा? सुख और दुख सबके पीछे तथाकथित है, इसका मतलब वास्तविक नहीं है। इसका अर्थ क्या? अब दूसरी लाइन पढ़ो तो इसका अर्थ मिलेगा। दूसरी लाइन में क्या लिखा है? कोई भी नहीं चाहता है कि दुख आए, किंतु वो आता है। कारण नहीं लिखा है या कारण आगे लिखा है? कारण क्या है? तथाकथित क्यों लिखा है? पहले ये प्रश्न आप इसका उत्तर दो। आता है जाता है तो इसको लिखना चाहिए अस्थाई, सदा न रहने वाला। तथाकथित इसलिए लिखा है कि शरीर के साथ है, आत्मा का नहीं है। आत्मा का सुख होता है, दुख होता ही नहीं है। आत्मा तो आनंदमय है, ये दुख और सुख है शरीर का, इसलिए तथाकथित है। ये तथाकथित है, जैसे माता जी कहती आने जाने वाला है, तो ये शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। ये तथाकथित है शरीर के, और सदा रहने वाला नहीं है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, ये दुख आता कहां से, ये कोई पूछे तो, दुख का जन्म कहां होता है? दुख का जन्म कहां होता है? भगवत गीता में क्या लिखा है? ये संस्पृशजा भोगा दुख योनिया एवते आद्य अंत वंत तुकोन्त्य नतेषु रमते बुद्धा। सारे दुख का जन्म इंद्रियों के विषय के भोग के गर्भ में होता है। कहां दुख जन्म लेता है? इंद्रियों के विषय के भोग में, किसी और जन्म के, पता नहीं कौन से जन्म में हमने इंद्रियों का वेश को विषय का भोग किया और वो दुख कठा था, इस जन्म में हमको मिला। तो दुख की जन्म स्थान कौन सा है? इंद्रियों के विषय का भोग। इसको एक हमारी व्यापारी भाषा में इसको कहते हैं, जो आजकल बाजार में मिलता है, एक खरीदो दो मिलेगा, एक के ऊपर एक मुफ्त, क्या कहते हैं? बाय वन गेट वन फ्री, एक के ऊपर एक फ्री। आप दबा के 100 गुलाब जामुन खाओ और डायबिटीज मुफ्त में लो। मतलब आप एक भोग करो और दूसरा आपको अपने आप मुफ्त में मिलेगा, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा। अब इसलिए करना क्या चाहिए? आद्य अंत वंत, और ये जो इंद्रियों का सुख है ये आने जाने वाला है। एक महात्मा के पास कोई गया, कहा महाराज कोई ऐसा मंत्र दीजिए संकट से मुक्त हो जाए। उसने कागज लिख के दे दिया, बोला इसको गले में बांध के रख दो, ये ताबीज है, बहुत संकट आए तो खोल के पढ़ना। तो रख के बैठा था, बहुत बड़ा संकट आया, महामारी कोई आ गई के मरने जैसी हालत हुई, पता नहीं कुछ चोर आए लूट गए कुछ भी हुआ। खोला, बोला महात्मा का मंत्र पढ़ो सुखी हो जाना। लिखा था महात्मा ये भी गुजर जाएगा, इतना ही लिखा था ये भी गुजर जाएगा और कुछ नहीं लिखा था। ये आया है तो ये भी गुजर जाए, रहने वाला नहीं है। तो फिर श्लोक का तीसरा शब्द क्या है? ये संस प्रसजा भोगा दुख योनि एवते आद अंतवंत, आद अंतवंत, इसका आद अंतवंत कौनते है, कुंती पुत्र इसका आरंभ भी होता है और अंत भी होता है। शरीर का आरंभ और अंत होता है, आत्मा का आरंभ और अंत नहीं है। इसके लिए तथाकथित दुख और सुख है, दोनों तरह तथाकथित है, क्योंकि इसका अंत आरंभ है, इसका आरंभ है और अंत है। जिसका आरंभ और अंत है वो तथाकथित है, जिसका शुरुआत है और जिसका अंत है वो तथाकथित है, क्योंकि वो भौतिक है तो वो हमारे स्वरूपगत नहीं है, वो उपाधि है। क्या है? उपाधि है, और उसको उससे उसको हटाना चाहिए। तो पहले तथाकथित का अर्थ समझना चाहिए, और दूसरा इसका और गहराई में अर्थ समझेंगे तो दुख और सुख सब मन की वृत्ति है, ये सब मन की वृत्ति है। ये 11वें स्कंद में जो अवंती का ब्राह्मण है वो इसी कथा को, ये सन्यासियों के लिए मंत्र है, अवंती का ब्राह्मण वाला जो प्रसंग है ये सन्यासियों को सन्यास के समय दिया जाता है कि आपका भ्रमण करने में दुख सुख आएगा, कोई आपको सम्मान देगा, कोई अपमान देगा, ये सब मानसिक स्तर पे, इससे परे रहना है। तो प्रभुपाद जी ने तथाकथित क्यों लिखा है ये पहले समझना चाहिए पढ़ने से पहले। और आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस प्रकार भौतिक सुख के लाभों को पाने के लिए प्रयास करने पर भी हमें सुख स्वत्व प्राप्त नहीं करने पर भी सुख स्वत्व प्राप्त हो जाता है। ऐसा कोई उदाहरण बिना प्रयास के सुख मिल जाए, कुछ नहीं किया सुख अपने आप मिल गया, लॉटरी खुल गई घर बैठे। हमारे यहाँ के अध्यक्ष थे जिनके संग हम पहले काम करते थे, महामन प्रभु, पहले उनके पूर्वज अफ्रीका में थे, फिर वो इंग्लैंड चले गए, यहाँ थे, सामान्य जीवन था। पता नहीं एक दिन लुधियाना से फोन आया कि आपके दादा के कुछ पैसे बैंक में जमा थे, वो बढ़ बढ़ के इतने 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 लाख हो गए। अब बताओ, उसने कुछ नहीं किया, वो तो अपने घर बैठा था, वो एक पूर्वजों की संपत्ति, बैंक वाले ने ही फोन किया कि इतना पड़ा है भाई, कोई है आपका, तो जाके वो उधर ले लिया, तो वो घर बन गया, सब कुछ अपने आप हो गया, तो वो तो छोड़ के आ गए थे ना। हमने देखा ऐसे, तो बैठे बैठे अचानक जिसको मिलना है वो तो आ ही जाता है बिना किसी प्रयास के, जैसे दुख बिना किसी बुलाए आ जाता है। ऐसे बहुत से आपको उदाहरण मिलेंगे कि आपने नहीं चाहा, आपने प्रयास नहीं किया फिर भी आ गया, और आपने बहुत प्रयास किया फिर भी नहीं मिला। तो ऐसे जीवन में एक उदाहरण हम सामान्य लोगों को देते हैं, एक ही बाजार में दुकान 10 है, 10 के ऊपर एक जैसा सामान है और एक जैसा सबका प्राइस है, मूल्य भी एक जैसा, कीमत भी एक जैसी है। एक शाम को 1,00,000 रुपया कमाता है, एक 1,000 कमाता है, एक 10,000 कमाता है, क्यों भाई, कारण क्या? सामान भी एक, कीमत भी एक, दुकान भी एक टाइम पे खोल रहे, अलग क्यों कमाई सबकी, मेहनत भी एक जैसी करते हैं, तब क्या कहते हैं, भाग्य है। वही समुद्र मंथन, वही क्षीर सागर जिसमें मेहनत दोनों ने बराबर की, दैत्यों को का मुंह काला हुआ और देवताओं को अमृत मिला, क्यों? काम तो दोनों का एक जैसा था ना कि नहीं? और यहां तो किसने भाग बनाया, भगवान ने आके मूर्ति, मोहिनी मूर्ति के रूप में। तो हमारा भाग भी बनाना, ये छह चीजें भगवान के हाथ में, वो कौन सी है? जन्म मृत्यु, यश अपयश, हानि लाभ, विधि राखा अपने हाथ। ये कहावत पक्की है, ये भरत को महाराज गुरुदेव वशिष्ठ सुना रहे हैं। क्या छह चीजें हमारे हाथ में नहीं है? जन्म मृत्यु, हानि लाभ, यश अपयश, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये विधि रखे अपने हाथ। इसका मतलब हमारे कर्मों के अनुसार समय के ऊपर मिलेंगे, अब नहीं चाहो तो भी मिलेंगे और चाहो तो भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये आपके बस में नहीं है, ये दूसरे किसी के हाथ में। अब प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, न प्रयास करने के ऊपर भी मिल जाएगा, आपने कुछ प्रयास नहीं किया कमाने का फिर मिल जाएगा। तो ये दुकानदार का एक आपको, और दूसरा आपको उदाहरण दूं आपके अपने जीवन का। आप भी स्कूल में जब पढ़ने गए थे तो पहली कक्षा में जो पांचवी तक तो जो थे साथ में उसमें से कितने आगे छठी में आए, कुछ रह गए कुछ आ गए, ऐसे हुआ कि नहीं हुआ? और छठी से जब बारहवीं तक आए तो थोड़े और कम बच गए, फिर आप में से कोई चला गया इंजीनियरिंग में, कोई MBA, कोई डॉक्टरी में, किसी में पता नहीं कहाँ चला गया, कोई क्या हो गया। अब किसने ये सब निर्णय लिया? एक पुस्तक, एक सिलेबस, एक ही टीचर सबको पढ़ाने वाला, लेकिन सबका अलग अलग रास्ता क्यों हो गया, सभी क्यों नहीं एक जैसे हुए? और बात यह भी नहीं है, इतनी भी नहीं है, अब तो हंसी की बात आती है, एक महात्मा कह रहा था क्या जरूरत है पढ़ने की, पढ़ के जो बहुत सबसे होशियार होता है, पहला नंबर आता है, वो क्या बनता है? डॉक्टर या इंजीनियर बनता है, यही करता है ना। और जो सेकंड क्लास में आता है वो क्या बनता है? वो क्या करता है? MBA। मियां बीवी बच्चों समेत ये एमबीए जो करता है ना वो बनता है उसी अस्पताल का एडमिनिस्ट्रेटर मैनेजर। और जो पहले नंबर के जो आए थे उनको चलाता कौन है, दूसरे नंबर वाला, उसके आज्ञा से वो नौकरी करेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, कौन करेगा, दूसरे नंबर वाला। अब तीसरे नंबर वाला जो थर्ड क्लास में आएगा वो क्या करेगा, क्या करेगा, थर्ड क्लास में जो आया वो ठेकेदारी करेगा, व्यापार करेगा, इधर से उधर देगा और दान देके उस अस्पताल को चलाएगा, अस्पताल वालों को भी चलाएगा, वो उसकी आज्ञा से चलेंगे। और जो फेल हुआ पास ही नहीं हुआ वो क्या करेगा, गुंडा बनेगा, वो इन सब से मंथली लेगा। और जिसने कुछ नहीं किया, स्कूल गया ही नहीं, फेल तो बात है गया ही नहीं, वो साधु बन के बैठेगा, वो सब इसके पांव आके पड़ेंगे, उसको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अब ऐसी जहां संसार की स्थिति है, इसलिए सभी को कृष्ण भावना में आके हरे कृष्ण जपना चाहिए, नहीं तो आपके सर के ऊपर थोपा जाएगा जो आपके नीचे वाला होगा। ये भौतिक जगत का नियम है, देख लिया आपने, ये सत्य के झूठ है, ऐसे ही है ना। इसलिए क्या करना चाहिए, इतना जरा प्रयास करने की जरूरत नहीं है, जितना जितने काम जरूर करना चाहिए पर इतना नहीं करना चाहिए मूर्खता से गधे की मजूरी, जिसमें हमारे को फिर कहा जाए नराधम और मूढ़ गधा कहा जाए, ऐसे ठीक नहीं। प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं, ये दुख सुख किसी भी जीवन में बिना प्रयास के मिलते हैं। इसका मतलब पशु जूनी में कहीं भी है तो ये दुख और सुख तो सबको उसके साथ अपने कर्मों के मिलते, कहां से है, अतएव दुख के विरुद्ध लड़ने या सुख के लिए कठिन शर्म करने में समय तथा शक्ति का अपव्यय व्यर्थ है। ये है शलाशिला प्रभुपाद जी, क्या दुख को टालने के लिए प्रयास करना और सुख को प्राप्त करने के लिए बड़ी कोशिश करने से हमारी समय और शक्ति दोनों का व्यर्थ में व्यय होता है। क्यों, क्योंकि वो बदलने वाले तो है नहीं। तब अब कोई अगर पूछे को तू क्या क्या फिर बीमार हूं, कोई इलाज नहीं करा हूं क्या, नहीं इलाज तो कराना है, वो नहीं है कि वो इलाज नहीं कराना है, एक विधि है उसको पालन करना है, परंतु तो उसके लिए इतना प्रयास करना कि ये हुए ही नहीं। हम कहते बहुत से ऐसे लोग ये कोरोना काल में मानो कि शीशे के घर में बैठे थे, कोई हमसे मिले नहीं, कोई हमको देखे नहीं, लेकिन उन्हीं को घर में आगे हो गया, आना था तो वो बच नहीं पाए, तो अनुभव से सबको मिला है, नहीं चाह। और ऐसे भी मैं लोग जानता हूं जो रोज सब कोरोना वाले मरीजों को देखता है उसको होता ही नहीं है, वो राधाचरण को हुआ ही नहीं, यहां वो कितने कोरोना के मरीजों को देखा उसको हुआ ही नहीं और सबको हो गया, जिनको था जो जो कमरे में बंद बैठे थे बात भी नहीं करते थे उनको हो गया, मुंह को बांध के बैठे हुए थे कठा के भी नहीं करेंगे उनको हो गया। अब ये इसको क्या करोगे आप, जिसको नहीं होना है तो कुछ भी करो नहीं होगा, और जिसको होना है आप कितना भी प्रयास करो तो बच नहीं सकोगे। तो ये प्रहलाद महाराज का कहना है, इसलिए समय और शक्ति का व्यर्थ में इन कामों के ऊपर बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब प्रभुपाद सकारात्मक शिक्षा देंगे, मनुष्य जीवन में हमारा एकमात्र कर्तव्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने संबंध को जागृत करना है, और इस प्रकार भगवत धाम वापस जाने के लिए योग्य होना चाहिए। अब ये है सकारात्मक प्रयास, कहां करना चाहिए परिश्रम, कहां करना चाहिए भगवान के साथ संबंध स्थापित करने में। सुख और दुख के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, दुख को हटाने के लिए समय नहीं गंवाना चाहिए, शक्ति नहीं गंवानी चाहिए, और दुख को पाने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, समय नहीं गंवाना चाहिए, शक्ति नहीं गंवानी चाहिए। तो समय और शक्ति का कहां उपयोग करना चाहिए, बोला मानव जन्म में, ये नाम क्यों लिखा? बोला अन्य किसी योनि में कुछ किया ही नहीं जा सकता। उन योनियों का नाम क्या है? भोग योनि। जितना समय रहना है, जो सुख दुख भोगना है वो भोगना पड़ेगा, उसमें परिवर्तन तो हो नहीं सकता। मानव जीवन में, जन्म में आपको मौका है, इसमें आप जितना परिश्रम करना है, जितनी शक्ति लगानी है, परिश्रम कितना करना है कोई पूछे तो, जब तक पसीना ना आ जाए, लथपथ ना हो जाओ भगवान को प्राप्त करने के लिए, तब तक करते रहो। इसमें अधिक परिश्रम करने के ऊपर पाबंदी नहीं है, प्रतिबंध नहीं है। यशोदा मैया कृष्ण को बांधने के लिए कितना परिश्रम किया, श्रृंगार बिगड़ गया, पसीना पसीना हो गई। साधन में, साधन को मंथन कहते हैं, और मंथन जो है घूमता घूमना बंद नहीं होता है, साधन हमारा चलता रहना चाहिए। इसमें हमारा सारी शक्ति और हमारा समय साधन में लगना चाहिए। मानव जीवन में, जन्म में मुख्य उद्देश्य ये। साधन क्या करेगा? हमारे भगवान के साथ संबंध को जागृत करेगा। जागृत लिखा है, बनाना नहीं है, पहले से है। हमारा भगवान के साथ संबंध नित्य शाश्वत पहले से है, जिसको हम भूल गए हैं उसको पुनः जागृत करना है। असल में इस भागवत ही एकमात्र मुख्य साधन है जो हमारे भगवान के संबंध को पुनः प्रकट करने में सहायक है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेशो नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकिर भक्तिर भवती नैष्टिकी। तो जो भक्ति में हम सब क्योंकि भक्त हैं, श्रद्धा हुई, साधु संग किया, दीक्षा भी ली और भजन भी कर रहे हैं, अब अनर्थ निवृत्ति में बहुत समय लगता है। अनर्थ निवृत्ति का सबसे सरल सुगम श्रेष्ठ साधन है भागवत का नित्य श्रवण करना। ये सबसे श्रेष्ठ है। प्रायः 90% सारे दोष भागवत को श्रवण करने से नित्य समाप्त हो जाएंगे और निष्ठा तक पहुंच जाएंगे। भक्ति कौन सी? निष्ठा वाली भक्ति प्राप्त हो जाएगी और फिर रुचि और आसक्ति तक पहुंचेंगे तो हमारा जो भाव है उसको फिर भाव है। भाव हमारे कौन से हैं? बोला सखा भाव है कि दास्य भाव है, वात्सल्य भाव है कि माधुर्य भाव है, वो जागृत हो जाएगा। तो भागवत के निरंतर श्रवण से हम अपना भगवान के साथ जो संबंध है उसको जागृत कर पाएंगे। और कोई साधन नहीं, अन्य साधन यहां तक लाने के लिए हैं, परंतु भागवत एकमात्र साधन है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी का अधिक से अधिक समय रातों जाग कर इस भागवत को आचार्यों के टीकाओं के साथ अपनी दूर दृष्टि से भौतिक जगत के कलिकाल के लोगों के कल्याण के लिए भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को और भावना को जागृत करने के लिए सबसे ज्यादा काम इसके ऊपर किया। अधिक से अधिक श्रील प्रभुपाद जी का समय, 125 साल उनके जन्म व्यास पूजा का आ रहा है, समझना चाहिए कि उन्होंने सबसे ज्यादा परिश्रम किसके ऊपर किया, इसी भागवत को देने के लिए। यहां से गए अमेरिका, यहां से गए, धन नहीं ले गए, लेकिन कोई कहता है कुछ नहीं ले गए, 40 रुपये थे जो $10 के बराबर भी नहीं थे, लेकिन किसी को मालूम नहीं है कि वो भागवत की 2 पेटी ले गए, वो पूरी अमेरिका को खरीद कर ले सकते थे क्या? ब्रह्मांड को खरीद कर सकते थे, उसकी कोई तुलना नहीं है। जो भागवत ले गए थे उसका क्या मूल है? बोलिए, इंद्र आया था सुखदेव गोस्वामी के पास, कहा परीक्षित को भागवत मत सुनाओ, मुझे सुनाओ, मैं अमृत देता हूं आपको स्वर्ग का, पिला देना परीक्षत को, परीक्षत मरेगा ही नहीं, सांप क्या करेगा उसका। सुखदेव महाराज ने कहा तुम भागवत अमृत की तुलना तुम्हारे स्वर्ग से, स्वर्ग के अमृत से करते हो, ये भागवत का अपमान है, तुम इसके सुनने के अधिकारी नहीं हो, उठाओ अमृत और चलो। इसका अर्थ है कि भागवत कथा सुनने के लिए आपको कोई कहे भागवत सुनाओ और पूछे क्या लोगे और आप कहोगे इतना लोगा, तो भागवत का अपमान हो गया, आपकी कथा का कोई महत्व नहीं है। आप, मैं अभी से वो शब्द नहीं कहना चाहता हूं, मुंह पे जबान पे आया है नहीं कहने, नहीं कहता हूं, रोक लेता हूं, व्यास आसन पे कहना ठीक नहीं है। ये जो धंधा है इसको प्रभुपाद ने नहीं तो भी पचासों जगहों पे भागवत में बड़ी सावधानी से लिखा है। भागवत तो भगवान के, और लिखा क्या है, नारद जी को क्या कहा है ब्रह्मा जी ने जब भागवत की चतुर्श्लोक की सिखाई है दूसरे स्कंद में, तो कहा है भागवत के प्रवक्ता का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि सुनने वालों के हृदय में कृष्ण प्रेम को जगाए, बस, और कोई उद्देश्य भागवत के वक्ता का नहीं होना चाहिए। भागवत कथा करने वालों के लिए ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा है इसका विपुलीकरण करो, इसको विस्तार करो, और कथावाचक का एक ही धर्म होना चाहिए कि सुनने वाले के वालों के हृदय में जो कृष्ण प्रेम है उसको जागृत करे, बस। तो ये भागवत प्रभुपाद जी का सबसे बड़ा उपहार विश्व कल्याण के लिए है। दसम स्कंद पूरा प्रभुपाद ने पहले ही लिख दिया कृष्ण परम पुरुष भगवान के रूप में। बारहवां मुक्ति का स्कंद है, नहीं लिखा, क्या जरूरत है, भक्ति करोगे तो मुक्ति की जरूरत क्या है, भक्ति की मुक्ति तो दासी है, हाथ जोड़ के खड़ी होती है, तो अलग मुक्ति की क्या जरूरत है, मुक्ति कोई आवश्यकता ही नहीं है, वो रह गया तो कोई बड़ी बात नहीं। जो मुख्य काम था वो बता दिया। तो यहां प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे समय को भगवान के साथ संबंध को प्रकट करने में, जागृत लिखा है, जागृत करने में, इसका मतलब अभी हमारा संबंध जो भगवान से है वो सोया हुआ है, उसको जागृत करो। तब भक्ति विनोद ठाकुर के इस भजन के शब्द कैसे आएंगे, जीव जागो घोर चंद्र बोले, तो कहां सोए हुए हो, माया पिशाची खोले, माया की गोद में सब सोए हुए हैं, माया की गोद में सोए हुए क्या कर रहे हैं, सुख ढूंढ रहे हैं और दुख को हटा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, माया की गोद में सोकर सुख को पाना चाहते हैं और दुख को हटाना चाहते हैं, यही तो काम कर रहे हैं। फिर साधन क्या बताया भक्ति विनोद ठाकुर ने, आगे क्या श्लोक भजन का, भगवान से वचन करके आए हो मां के गर्भ में के भगवान तुम्हारा भजन करूंगा, चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण मंत्र लाए, अब मांग के ले लो, ले हो मांगे, ऐसे है ना, हरे कृष्ण महामंत्र ले हो मांगे, चैतन्य महाप्रभु लाए हैं, मांग के ले लो। हम तो घर में जाके उस व्यक्ति को जैसे जबरदस्ती भोजन खिलाया डाकू ने चार हाथ पांव पकड़ के, प्रभुपाद कहते हैं आजकल के कलयुग के लोगों को नाम जपाना इतना ही कठिन है जितना गधे घोड़े को दवाई देना, चार आदमी पांव पकड़े, पांचवा मुंह खोले, छठा दवाई डाले। इसलिए भगवान को भी कलिकाल में पंच तत्व के रूप में आना पड़ा कि ये सुधरने वाले है नहीं, इनके लिए बहुत बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। और इसलिए प्रभुपाद ने दो चीजों को ही मुख्य कहा, कीर्तन और प्रसाद। जो कीर्तन करके थक जाएंगे उनको प्रसाद दो ताकि वो और कीर्तन कर सके, और जो कीर्तन वालों के ऊपर मुंह खोल के कुछ बोलना चाहे उसके मुंह में लड्डू मारो चुप करे, दोनों जगह प्रसाद काम करेगा। हमारे विष्णुजन स्वामी प्रभुपाद जी के दूसरे बैच के सन्यासी, वो दो डजन रोज के 24 सिंपली वंडरफुल जो दूध के पाउडर, मक्खन और पाउडर चीनी, पीसी हुई चीनी और किशमिश डाल के बनते थे, वो अपनी जेब में रखते थे। 8 घंटा कीर्तन करते थे, 24 खा उनका वजन था, वो खाते रहते थे कीर्तन, ओ खाया, वो एनर्जी साथ में रहते थे, 2 डजन लेके घर से निकलते थे। तो प्रसाद कीर्तन को बढ़ाने के लिए है कि थक जाओ तो खाओ और फिर कीर्तन करो, और प्रसाद लेके घूमते रहो, कोई बोले ये क्या कर रहे, चुप मुंह में डालो। हम डाकरी करते थे ना, तो 5-6 लोग आके बैठते हैं, एक से बात करते, सब बोलते डॉक्टर मुझे ये, हमने 6 थर्मामीटर रखे थे, सबके मुंह में डाल देते थे, हमारा सर तो नहीं खाएगा, थर्मामीटर उसके मुंह में, वो समझेगा डॉक्टर हमारा मरीज, हमको कोई बुखार नहीं देखना होता था, उसको चुप कराना। तो ये जो बेकार के है ना, उसको लड्डू मुंह में डाल दो चुप, और जिसके मुंह में लड्डू जाएगा वो तो फिर थोड़ा सा तो हमारा सहयोगी हो ही जाएगा ना। तो इसलिए 2 ही चीजें प्रचार के लिए, परिश्रम करना है तो कीर्तन करो और प्रसाद वितरण करो। ये हमारे गुरुकुल के बच्चे, कूर्मा रूप प्रभु इनको ले जा रहा था गर्मियों में छुट्टियों में हिमालय में, पैसे नहीं थे, पैसे उस जमाने में भक्तों के पास पैसे नहीं होते थे। वो देहरादून पहुंचा, ऊपर जाने के लिए बोला इन बच्चों को खिलाऊंगा कहां से, चलो हम तो उपवास करेंगे, ये तो छोटे बच्चे हैं। सोचा क्या करें, चलो कीर्तन करते हैं बाजार में। वो बच्चों को लेके बाजार में कीर्तन करने लगे, तब तक तो 20 आदमी आ गए, बोला हम आपके इस्कान मंदिर में गए थे, हम आपके लाइफ मेंबर हैं, आप हमारे घर आके भोजन करो। वो तो 15 दिन उनको फीस्ट मिल रहा है, कुछ भी नहीं करना पड़ा, कुछ नहीं सोचना पड़ा, वो अपने जीवन का लिख रहे। श्री प्रभुपाद ने कहा आप कीर्तन करो, आपकी सारी आवश्यकताएं पूरी और समस्याएं दूर। ये बॉस्टन मंदिर पहले, दूसरा मंदिर है शायद इस्कान का, तीसरा न्यूयॉर्क, फिर सैन फ्रांसिस्को, फिर लॉस एंजल्स, फिर बॉस्टन, ये पहले 3-4 मंदिर हैं। तो वहाँ भक्त इकट्ठे हुए, कहते थे पैसा है नहीं क्या करे, एक नौकरी करता था, तनख्वाह से जो मिलता था उससे मंदिर चलाता था। तो एक सरल भक्त था नंद कुमार, उसने कहा प्रभुपाद ने कहा अरे कीर्तन करो, सब आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी और सब आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी, तो काय के लिए नौकरी करे, चलो कीर्तन करते हैं। वो चले गए कीर्तन करने, और कीर्तन करे, शंख बजाए और शंख को ऐसे सीधा करें लोग उसमें पैसे डाले, और शाम को वापस आए तो 10-12 डॉलर हो गए। वो बड़े बहुत जमाने, उस जमाने में बहुत बड़े थे 10-12 डॉलर। दूसरे दिन कीर्तन करने गए तो 25 डॉलर हो गए। बोला अब प्रभुपाद ने सत्य कहा है, कीर्तन करो, कुछ करने की जरूरत नहीं, परिश्रम करना है तो इसी काम के ऊपर करो और प्रसाद वितरण करो बस। और ये प्रसाद वितरण करना कितना काम करता है। एक भक्त हमारा बैंक में गया लोन लेने के लिए, कोई काम होगा मंदिर का या अपना, बैंक मैनेजर उसको कहता है कोई गारंटी की जरूरत नहीं है, हम आपका प्रसाद खा के मैनेजर बने हैं, इसलिए आपको जो चाहिए वो ले जाओ। जब पढ़ते थे आपका प्रसाद खा, मंदिर का प्रसाद खा के, तो ये प्रसाद आपको पता नहीं है कितना बड़ा काम करता है, बहुत बड़ा काम करता है ये प्रसाद। तो परिश्रम करना है आपको और भगवान के प्रेम को जागृत करना है तो भागवत को सुनो, कीर्तन करो और प्रसाद वितरण करो, बस इतना काम करोगे तो काम हो जाएगा। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, बोला क्यों करें अपना भगवान के साथ संबंध जागृत, तो उसके लिए कहते हैं भगवत धाम वापस जाने के लिए योग्य होना चाहिए, अपने आप को भगवत धाम जाने के लिए योग्य बनाओ, अधिकारी बनाओ। भगवान के घर जाने के लिए अपने आप को अधिकारी बनाने के लिए क्या करना, कौन रोकेगा कोई कहे तो। भगवान के धाम जाने से पहले माया भगवान की तरफ से इस संसार के अंदर बहुत बड़ा सबको चेक करने वाला भगवान की ओर से नियुक्त है। जब एक भी भौतिक इच्छा हृदय में होगी तो धक्का दे के माया वापस संसार में डाल दी। इसलिए भौतिक इच्छा से शून्य होना है, भगवत प्राप्ति की इच्छा को बहुत तीव्र रूप से प्रकट करनी है। वो तो लोभ हो जाए तो ये करो, भगवान प्राप्त करना है, इस जन्म में करना है। एक यम भक्त मैं जानता था, अभी तो है कि नहीं देखना पड़ेगा, उसका नाम था छगन लाल। ये छगन लाल नाम कोई पंजाबी और सिंध में और कहीं नहीं है, और ये नाम भगवान है। छगन का मतलब 6 गुण, जो छह गुणों वाला भगवान है वो छगन, वो 40 साल से वृंदावन में रहा, बोला इसी जन्म में भगवान को प्राप्त करना है, कहीं नहीं जाना है। उसने पीएचडी की और डी लिट किया रूप गोस्वामी के अपना ये वृद भागवत के ऊपर आगरा से, पढ़े लिखे थे, ब्रज से बाहर नहीं गए, पर यहीं रहना है, इस जन्म में भगवान को पाना है, ऐसा पक्का दृढ़ संकल्प करना, ये परिश्रम अच्छा है। परंतु ये फिर भी भजन आनंदी हो गया, गोष्ठी आनंदी, कहीं भी भगवान का प्रचार करे तो उस जगह को भी गौ वृंदावन बना देगा, गौलोक बना देगा। इसलिए प्रचार पहले जरूर करना चाहिए, ये दृढ़ संकल्प की आवश्यकता नहीं है। योग्य कैसे बनाएंगे भगवान को धाम जाने के लिए, ये बहुत मुख्य प्रसंग है अपने आप में। हमारे द्वारा भौतिक शरीर स्वीकार करते ही सुख या दुख आते ही रहते हैं। प्रभुपाद ने कहा भगवत धाम क्यों जाओ, बोला जब तक यहां रहोगे तो भौतिक शरीर मिलेगा, तो दुख और सुख से छूट नहीं सकते हो, क्योंकि वो शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो शरीर किसी भी रूप में हो, देवता का हो या सुअर का हो, हम किसी भी दशा में ऐसे सुख और दुख से बच नहीं सकते। अतएव मनुष्य जीवन का सबसे अच्छा उपयोग परम भगवान विष्णु के साथ अपने संबंध को पुनः जागृत करना है। तो प्रभुपाद महाराज की शिक्षा से हमको भगवान के साथ अपने संबंध को जागृत करने के लिए क्या करना चाहिए, भागवत का नित्य श्रवण करना चाहिए और भागवत पुरुषों का संग करना चाहिए, भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, प्रसाद वितरण करना चाहिए। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न जिज्ञासा है? कोई प्रश्न जिज्ञासा है? एक हाथ पीछे है क्या, ऊपर क्या कहते हैं प्रभु जी, पूछिए। प्रसाद वितरण करने को कहा है, खाने को थोड़ी कहा है, सब जाए गलत समझे वो वितरण करने को कहा है, वो तो जा खाने जा रहे हैं। एक का क्या
कहो उस लाख मेरे छगन मगन की, तो आपने छगन नाम लिया ना, तो कह रहे हैं कि भाई मेरे छगन मगन की कुछ लाख कहो,
छगन के चिंतन में मगन रहो, मतलब श्री कृष्ण के ध्यान में मगन रहो, छगन मगन। छगन का मतलब छह गुण, पहले हम सोचते थे समझ में नहीं आता था। एक संत का नाम है टेऊ राम, उसका मतलब तीनों गुणों से जो ऊपर पहुंचे और राम को प्राप्त करे, लेकिन इसका अर्थ हमको समझ में नहीं आता, समझता पता नहीं टेऊ क्या है। चलो किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हाँ जी।
दो प्रश्न है, एक प्रश्न ये है कि सुनते हैं परश्रमेण सिद्ध्यन्ति कार्याणि नाम वर्तते,
क्या
नीति शिक्षा में सुनते हैं कि परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, केवल मदद करने से नहीं, यहाँ कह रहे हैं कि सुख को अपने आप आते हैं, तो इस कंडक्शन से
वो नीति शास्त्र में क्या लिखा है,
परश्रमेण सिद्ध्यन्ति कार्याणि नाम वर्तते,
वो अगले जन्म की बात कर रहे हैं, पहले जन्म में परिश्रम किया इसलिए ये शरीर मिला, इसलिए दुख सुख मिल रहा है, अब परिश्रम करोगे तो नया शरीर मिलेगा, उसमें सुख दुख मिलेगा, चाहे सुख मिले देवताओं का लेकिन फिर भी इंद्र को बलि मारा जाएगा तो भागना पड़ेगा, और नहीं तो कभी सुकर कुकर बनना पड़ेगा। तो ये सिद्धांत सही है, परंतु ये सिद्धांत दूसरे शरीर को लेने के लिए बाध्य तो करेगा, और यहां जो भागवत धर्म है कि दूसरा शरीर लेना ही नहीं है, भगवत धाम जाना है, उसके लिए सारा परिश्रम करना चाहिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवत धाम जाने के लिए, अधिकारी बनने के लिए और भगवान के साथ संबंध स्थापित करने, वो भी सही है, वो नीचे का स्तर है, उस धर्म का परित्याग करना है, सर्वधर्मान परित्यागे में उसका त्याग परित्याग करना है और इस धर्म का पालन करना है। ये लिखा है भागवत के अंतिम श्लोक में, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, भगवान के नाम का कीर्तन करोगे सब पाप नाश हो जाएंगे, बोला पाप किए थे उसका दुख, बोला हरि प्रणामो दुख शमनम, भगवान को प्रणाम करोगे सब दुख चले जाएंगे। तो भागवत में दो ही पूर्ण आहुति के श्लोक में दो ही बातें की है, कीर्तन करो पाप जाएगा, प्रणाम करो दुख जाएगा, पाप का फल। बस कुछ नहीं करना है, जाओ प्रणाम करो और कीर्तन करो, दुख भी गया पाप भी गया और प्रसाद खा के मौज करो। हरे कृष्ण। हाँ जी क्या
मान लीजिए मेरे कंप्यूटर पे, मेरे ईमेल पे मुझे तक 10 वर्ष पहले सूचना आ रही US लॉटरी ये वो, योर नंबर योर ईमेल आईडी सिलेक्टेड फॉर इतने करोड़ डॉलर के लिए, तो मैंने तो साइबर कैफे में था फिर से मैंने मेल छुपा दिया। मैंने सोचा कि अब शायद थोड़ी देर बाद मैंने गूगल पे सर्च किया तो देखा कि ये सब मैसेज फ्रॉडलेंट होते हैं। तो अगर कोई अपनी डिटेल्स दे दे
वो, आजकल ये तो चक्कर चल रहा है, जो ऐसा होता है उसको डिलीट कर लो। पर मैं आपकी बात से पता नहीं एक बात मेरे को अच्छी याद आ रही थी, भूल गई, पता नहीं भूल गई, क्या कर सकते हैं। एक मेरे पास मैसेज आया कि मोटापा कम करने के लिए ये चार चीजें लो, तो मैंने एक मेरे मित्र को फोन किया कि यार ये चीजें, बोला कहाँ पड़ा, बोला फेसबुक में, बोला मैंने लिखा है मेरी चीजें बिकती नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। तो उसने बोले मेरे को सीधा यही बोला कि मैंने ही डाला है फेसबुक में, मेरे पास बेकार पड़ा है, कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं, इसलिए गूगल गुरु के ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं करो और जगत गुरु श्री कृष्ण और उसकी शिक्षाओं के ऊपर विश्वास करो। हरे कृष्ण।